ओम शांति। आज की चर्चा की शुरुआत एक घटना से करते हैं। किसी गांव में एक अपरिचित सा फकीर आया। गांव के सभी लोग उसके पास गए और उससे कहने लगे कि गांव का जो पुराना मंदिर है, आप वहां पर आइए और कुछ उपदेश दीजिए। शुक्रवार के दिन तो फकीर उस मंदिर में जाता है। गांव वाले सारे इकट्ठा हुए हैं और उनसे कहता है, मेरे प्रिय आत्मन, क्या आप सभी जानते हो मैं आपको जो बताने वाला हूं? सभी गांव वाले कहते हैं नहीं। तो वो फकीर उठ के निकलता है और कहता है, क्योंकि जिस विषय के बारे में मैं बोलने वाला हूं उसके विषय में आपको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे अज्ञानियों के सामने बोलने से क्या फायदा। और वो निकलकर चला जाता है। गांव वाले बड़े ही हैरान होते हैं, ऐसा कोई साधु उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं होता। फिर अगले शुक्रवार गांव वाले उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ उपदेश कीजिए, और वो राजी हो जाता है। इस बार गांव वाले कुछ और ठान कर बैठते हैं। फकीर पूछता है कि जिस विषय के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, क्या उस विषय में आप कुछ जानते हो? सारे गांव वाले कहते हैं हां, क्योंकि पिछली बार ना कहा था। तो फकीर कहता है, जिस विषय के बारे में मैं आपसे कहने वाला हूं, उस विषय को अगर आप पहले से ही जानते हो तो ऐसे ज्ञानियों के सामने बोलने का क्या अर्थ है? और वो निकल जाता है। गांव वाले और ज्यादा हैरान होते हैं। अगले शुक्रवार फिर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, प्रभु कुछ उपदेश कीजिए। फकीर फिर से राजी हो जाता है। एक बार हां कहीं व्यर्थ गई, दूसरी बार पहली बार हां, पहले बार ना, फिर हां। इस बार गांव वाले कुछ और सोचते हैं। फकीर फिर आता है और फिर वही प्रश्न पूछता है, जिस विषय के बारे में मैं आपसे कहने जा रहा हूं, क्या उस विषय को आप जानते हो? तो जैसे उन्होंने सोचा था या फिर निश्चित किया था, उस अनुसार आधे लोग कहते हैं हां और आधे लोग कहते हैं ना। तो फकीर कहता है, जो ये कहते हैं कि मैं जो कहने वाला हूं जानते हैं, वो उनको बता दे जो नहीं जानते हैं। गांव वाले और ज्यादा हैरान होते हैं। चौथी बार उस फकीर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। क्या चौथा भी कोई विकल्प पर्याय हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर हो सकता है, गांव वालों के पास तो यह हिम्मत नहीं थी उसको फिर से आमंत्रित करने की, पर क्या ऐसा भी कोई जवाब हो सकता है कि अगर वो दिया होता तो शायद फकीर रुक गया होता है और अपना प्रवचन उनको कहता, सुनाता, अपने विचार की लेन देन करता? वो कौन सा उत्तर हो सकता था? बोलना व्यर्थ हो चुका था। चुप। शायद अगर वो मौन रह जाते, उसका प्रश्न था क्या आप जानते हो, अगर वो मौन रह जाते, ना कुछ कहते, ना कुछ में सब कुछ है, तो शायद उस मौन सभा में, उस मौन की पृष्ठभूमि पर वह अपने विचार को, अपने विचारों के बीज को बोता। मौन ही वो माध्यम है जो सत्य तक पहुंचाता है, शब्द नहीं। शब्द सत्य तक पहुंचाने के लिए नहीं है, सत्य मौन तक पहुंचाने के लिए, सत्य तक मौन पहुंचाता है। जब आत्मा मौन का आनंद लेने लगती है और जहां मौन के अमृत की वर्षा होने लगती है, उसी क्षण जहां एकांत के घने बादल छा जाते हैं, वहां वो मौन का अमृत बरसता है। उसी एकांत में और उसी मौन में और उसी अंतर्मुक्ता की गुफा में सत्य का आगमन होता है, वहीं सत्य का अवतरण होता है। केवल शब्द सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। जो कुछ हम सुन रहे हैं, अपने आप से पूछो, वो कहीं केवल सत्य तो नहीं? क्या उन शब्दों में सत्य की अनुभूति होती है? क्या उन शब्दों में सत्य की कोई प्रतीति होती है? क्या उन शब्दों में सत्य का कोई बोध होता है, या केवल शब्द मात्र है? जैसे हमने शब्द सुना घर, तो घर शब्द सुनते ही घर का चित्र आता है। घोड़ा शब्द सुनते ही घोड़े की अनुभूति होती है। वैसे ही हम अगर कहें आत्मा और परमात्मा, तो किस चीज की अनुभूति होती है? ये प्रश्न स्वयं को पूछना है। जैसे ही शब्द उच्चारण किया बाबा, तो वो केवल निरा शब्द है, थोथा शब्द है, या उस शब्द के पीछे कोई गहन अनुभूति का, उस गहन अनुभूति होती है, यह स्वयं से पूछना है। केवल शब्दों को नहीं, परंतु शब्दों में छुपे हुए अर्थ को, शब्दों के पीछे जो अनुभव है, उनको अनुभव करना है। बाबा जो भी कहते हैं, वो केवल शब्द नहीं, परंतु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। केवल शब्द को ही पकड़ लेना हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे कोई एक प्रेमी किसी समुद्र के किनारे जाता है, शाम का वो समय है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और समुद्र से तरंगे उठ रही है, सूर्यास्त हो रहा है, और उसे वो सारा ही मनोहर नैनाभिराम दृश्य देखकर अपने प्रियसी की याद आती है और सोचता है कि मैं उस प्रियसी को इन सभी चीजों का अनुभव करा दूं। वो प्रियसी तो कहीं दूर है, कोसों दूर किसी अस्पताल में बीमार है। वो सोचता है कि जो अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है इस समुद्र के किनारे पर, वो एक संदूक लेता है और उस संदूक में वो जो हवाएं हैं वहां की ठंडी ठंडी, उन ठंडी हवाओं को उस संदूक में, उस पेटी में भरता है। सोचता है कि जो अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है इस समुद्र के किनारे पर, वही अनुभव मेरी जो प्रियसी है, वो जो दूर बैठी है, मैं उसको भी कराऊं। और वो संदूक को भेजता है उसके पास। संदूक उस प्रियसी तक पहुंचती है, वो संदूक को खोलती है, परंतु उसमें कुछ भी नहीं है। ना तो वो समुद्र की हवाएं है, ना तो वो अनुभव है, ना वो ठंडी का अनुभव है। हम तक जो पहुंच रहा है वो केवल शब्दों की पेटी ना हो, परंतु उसमें क्या हो? अनुभव समाया हुआ हो। उस सत्य के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य के परम बोध के लिए, केवल शब्दों का सहारा नहीं, अंतस जगत की यात्रा करनी पड़ेगी। ये यात्रा अंतर जगत की है, ये यात्रा अंतर जगत की है। एक है बहिर जगत, एक है अंतर जगत। बाह्य जगत और अंतर जगत, माइक्रोकॉजम और मैक्रोकॉजम। मैक्रोकॉजम से माइक्रोकॉजम जो है वो कई गुना अधिक विशाल है, श्रेष्ठ है। हमारी जो यात्रा है वो अंतर की यात्रा है, हमारी जो यात्रा है वो अंतर जगत की यात्रा है। और इस यात्रा के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहला जो कहा वो मौन, परम मौन में ही परम सत्य का उद्घाटन होता है। दूसरा है आज के मुरली के स्लोगन से, अमृत वेले क्या करो, एकांत प्रिय। तो दूसरा है एकांत, उसी एकांत में अतिंद्रिय सुख की वर्षा हो सकती है। मौन, एकांत। और तीसरी एक गुफा है, जिस गुफा के अंदर चलना होगा, और वो गुफा है अंतर मुखता की गुफा। जब तक इस मार्ग में हम इन तीन सी चीजों को अपने जीवन में नहीं धारण करते, तब तक उस परम सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते। चीन में एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक कवि हुआ है लाओत्से, उसी के नाम पर बाद में एक सिद्धांत निकला जो कि धर्म के रूप में उसने उसका रूप लिया, ताओइज्म। लाओत्से ने कभी अपने काल में किसी एक संगीतज्ञ के बारे में सुना था, परंतु ये संगीतज्ञ ऐसा था कि उसके पास कोई भी संगीत का वाद्य नहीं था और वो कभी भी कोई गीत नहीं गाता था, फिर भी वो गायक था और संगीतज्ञ था। लाओत्से के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि ऐसा ये कौन सा संगीतज्ञ है, मैं इसे देखना चाहता हूँ और उसको जानना चाहता हूँ और इसके संगीत को सुनना चाहता हूँ। और निकल पड़ता है उस संगीतज्ञ की खोज में और एक दिन उसके द्वार तक पहुँचता है। देखता है वो कुटिया के बाहर एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। लाओत्से उससे पूछता है कि तुम्हारा वाद्य कहाँ है, तुम्हारा गीत कहाँ है, तुम कौन सा गीत गाते हो। वो गायक कहता है, वो संगीतज्ञ कहता है कि मैं कोई गीत नहीं गाता, मैं किसी जमाने में गीत गाना पड़ता था, अब गीत गाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो गीत स्वतः ही निकलता है। तुम्हारा वाद्य कहाँ है, वाद्य मेरे पास है ही नहीं, वाद्य कभी था जब स्वरों की आवश्यकता थी बाहर से उत्पन्न करने की, अब स्वर अंदर से ही निकलते हैं। लाओत्से पूछता है, परंतु ऐसा कोई संगीत मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो कहता है कि तुम यहाँ रुक जाओ और मेरे पास बैठ जाओ। लाओत्से उसके आश्रम में रुक जाता है। कई महीनों के बाद लौटता है तो उसके शिष्य उससे पूछते हैं, कौन सा संगीत तुमने सुना। लाओत्से कहता है, मैंने जो संगीत सुना उसमें शब्द नहीं है, मैं जो संगीत आज सुनकर आया हूँ वो शून्य का संगीत है, वो मौन का संगीत है। मौन के संगीत में शब्द खो जाते हैं, ये अनुभव का संगीत है। ये नृत्य जो मैंने देखा है ये मौन का नृत्य है, परम मौन और परम संगीत और परम नृत्य वहां घटित होता है जहां पर अनुभव होता है। शब्द जहां खो जाते हैं, व्यक्त देश जहां खो जाता है, व्यक्त भाव जहां खो जाता है, इस संसार का सब कुछ जहां विलीन हो जाता है, सब कुछ जहां विसर्जित हो जाता है, ऐसी चेतना की परम अवस्था में परम सत्य का जन्म होता है। तो आज बाबा हमें किस यात्रा पर ले चल रहे हैं, अंतर्मुखता की यात्रा पे। वैसे आज का दिन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओम शांति भवन का आज की शाम का वह दृश्य कैसा था, परम मौन छाया हुआ था। मंच पर कौन बैठी थी? ज्वाला देविया, ज्वाला देवताएं और ज्वालामुखी प्रकट हुआ था। अंतरराष्ट्रीय योग का ये दिवस था। और कौन सा दिवस है आज? आज एक और बहुत बड़ा विशेष दिवस है, आज फादर्स डे है। पता है ना माताओं को, आपके बाप का दिन है आज, तो आज फादर्स डे भी है। मास कौन सा चल रहा है? मम्मा का, मुरली की जो मस्तानी थी, अपने रग रग में जिसने मुरली का संगीत समाया था, अपने हृदय में जिसने उस परम मौन को धारण कर लिया था, ऐसी जो कि राधा थी और राधा से सरस्वती बनी और सरस्वती की वो तार छेड़ते छेड़ते एक दिन जगदम्बा बनी, राधा से जगदम्बा की जगदम्बा सरस्वती तक की जिसने यात्रा पार की, वह दिन भी अभी आने वाला है। तो आज की यह शाम बहुत ही विशेष है। आज बाप दादा किससे मिल रहे हैं? चैतन्य फूलों से। और बाप दादा की ये क्या है? फुलवाड़ी है। तो बाप दादा आज अमृत वेले से विशेष रूप से किन विशेष बच्चों को देख रहे हैं? किन विशेष बच्चों को देख रहे हैं? आज बाप दादा विशेष किन बच्चों को देख रहे हैं? उन बच्चों को देख रहे हैं जो सदा सहयोगी है, उन बच्चों को देख रहे हैं जो शक्ति स्वरूप है, उन बच्चों को देख रहे हैं जो सदा मुक्त है, उन बच्चों को देख रहे हैं जो सदा योग युक्त है, शक्ति स्वरूप, शक्ति अवतार। बाबा ने प्रश्न में पूछा है आज, शक्ति अवतार आत्माएं, शक्ति स्वरूप अवतार आत्माओं के बोल कौन से नहीं हो सकते? बाप दादा शक्ति रूप आत्माओं को देख रहे हैं, शक्ति स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं, उनके कौन से बोल नहीं हो सकते? चाहते नहीं परंतु हो गया। ये शक्ति रूप आत्माओं के बोल नहीं, ये अधिकारी आत्माओं के बोल नहीं, ये ब्राह्मणों के बोल नहीं, ये मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के बोल नहीं। ऐसे बोल किसकी निशानी है? अधीनता की निशानी है। पिछले संडे की मुरली, अब नहीं कब, ये बाबा को पसंद नहीं, लौकिक में भी पसंद नहीं था। आज का कार्य आज, अब का कार्य अब, ट्रेन छूटने वाली है, अभी अभी जाओ, अभी अभी। कभी कभी वाले बच्चे बाप को पसंद नहीं है, अब की भाषा उसे पसंद है, अब की भाषा, अभी अभी की भाषा बाप दादा को पसंद है। आज बाप दादा विशेष अमृत वेले से विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जो सदा ही सहयोगी है। जो सहयोगी है, जो सहयोगी है, वही एक दिन क्या बन जाते हैं? सहज योगी। बाबा ने सहज योगी की भी बहुत सारी निशानियां आज गिनाई है। सहज योगी अर्थात बाप का बच्चा बनना, अर्थात सहज योगी बनना, बच्चा बनना अर्थात ही भाग्यशाली बनना। बच्चों का बाप के सिवा और है ही कौन है? माँ के प्यार के संबंध से माँ याद आती है, परंतु प्राप्ति के संबंध से बाप याद आता है। जो सहज योगी है वही सहयोगी, जो है सहयोग देते देते वही एक दिन सहज योगी बन जाते हैं। सहज योगियों की भी बाबा ने कुछ और निशानियां बताई है। ऐसे सहज योगी बच्चे जिनके सामने सहज पुरुषार्थी कहो या सहज योगी कहो, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हिमालयन प्रॉब्लम, हिमालय से बड़ी समस्या आ जाए तो भी उड़ती कला के आधार से सेकंड में पार कर सर्व प्राप्ति स्वरूप बनते हैं। उड़ने की कला है उनके पास, मानव से फरिश्ता बना दिया है बाबा ने। क्या कहा आज? मानव थे पर बन गए क्या फरिश्ता। पांच तत्वों की आकर्षण और कोई भी प्रकार की इम्प्यूरिटी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसे फरिश्ता, ऐसी निर्विकारिता की मनसा की स्टेज। तो सहज योगियों की निशानी है, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए सहज पार करेंगे, उड़ती कला से पार करेंगे और सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे। ये सहज योगी का प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण कौन बताएगा? भविष्य और वर्तमान के प्रारब्ध के अनुभवी होंगे। जैसे स्थूल नेत्रों से स्थूल वस्तु को स्पष्ट देखते हो, वैसे ही प्रारब्ध को स्पष्ट अनुभव करेंगे। कब अनुभव करेंगे? अभी। कौन से प्रारब्ध? केवल वर्तमान के नहीं, भविष्य के भी प्रारब्ध को अभी अनुभव करोगे। इसके लिए जीवन मुक्त कहा बाबा ने, उसका भी अनुभव कहाँ करना है? संगम युग पर। सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, किस जीवन मुक्ति की बात चल रही है, किस प्रारब्ध की बात चल रही है? संगम युग के प्रारब्ध की बात चल रही है। संगम युग का प्रारब्ध है मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप दादा ने ऐसे विशेष बच्चों में और दो विशेषता देखी, वो दो विशेषता है मुक्त कहाँ तक हुए हैं और जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। ऐसी दो विशेषता उनमें देखी। तो बंधन मुक्त ही योग युक्त है और जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त कहाँ तक हुए है? तो दूसरी सहज योगी आत्माओं की निशानी क्या है? प्रारब्ध। तीसरी निशानी, हर कदम में पदम, सुख शांति सारे खजाने, ज्ञान गुण शक्तियां खुशी और नशा, कभी इन नशों से खाली नहीं है, सदा ही भरे हुए हैं। चौथी निशानी, राह में गिरने वाले नहीं है, गाइड बनकर दूसरों को राह दिखाने वाले हैं, मौज खाने वाले नहीं है, गिरने वाले नहीं है, चोट खाने वाले नहीं है, रास्ते को दोष देने वाले नहीं है। परंतु नृत्य ही इतना अच्छा है कि आंगन को दोष नहीं दिया जा सकता है। वो तो आंगन को दोष तब देते हैं जब खुद ही नाचना नहीं जानते। तो टेढ़े रास्ते को सीधा रास्ता करने वाले, कलयुग को सतयुग बनाने वाले, रास्ते के अगर पत्थर हो तो, जैसे हमारे गोपी भाई, क्या किया उन्होंने? एक बड़ी अच्छी बात की, नकी से अनादरा तक जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा था। न मालूम कितने समय से रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी और कंकड़ और पत्थर डालकर आखिर उन्होंने वो जो खड्डा था वो बुझा ही दिया। तो ऐसे बाबा के अनन्य रत्न यहाँ पर भी है। तो उसके बाद आगे की निशानी, अलबेलेपन से भी पहले की एक निशानी। अच्छा चलो अलबेले, तो अलबेले नहीं होंगे, सदा बाप के साथ का अनुभव करेंगे। तो ये थी छठवीं निशानी। और पांचवी निशानी, सदा बाप के साथ वो अलबेलेपन में ही आ गया। लव में लीन रहेंगे, लवलीन अवस्था। लवलीन अवस्था ऐसी अवस्था है जैसे कि समाये हुए हैं, जैसे कि बाप समान बने हुए हैं। उस अवस्था में बाहर का कोई भी वातावरण, बाहर का कोई भी वायुमंडल प्रभावित नहीं करता। ऐसी लवलीन अवस्था, यह योगी की अवस्था दिखाई हुई है। सुना होगा भक्ति में मीरा की कैसी अवस्था थी, कृष्ण के प्रेम में तल्लीन। चैतन्य महाप्रभु की कैसी अवस्था थी, कृष्ण प्रेम, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण और कृष्ण ही कृष्ण। गोपियों की कैसी अवस्था थी, कृष्ण ध्याति गीति, कृष्ण गाति गीति, कृष्ण ध्याति चित्ति, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्यानी, कृष्ण कृष्ण कृष्णमय उनका जीवन हो चुका था, ऐसी उनकी अवस्था थी, समाई हुई लीन अवस्था, तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, ऐसी अवस्था उनकी उन भक्तों की थी। यहाँ तक कि विदेश के जो भक्त है, सेंट बर्नार्ड, सेंट जॉन, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, ये सारे जो रोमन कैथोलिक संत थे, उनकी भी ऐसी ही तल्लीन अवस्था रहती थी, इतनी मगन अवस्था कि जिसका ध्यान कर रहे जैसे वो उसी के समान हो जाते थे। तो केवल लव नहीं, बाबा ने नव शब्द निर्माण किया है यहाँ पर, न्यूलॉजिज्म जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, लव और लीन, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द बाबा ने बहुत सारे शब्द नए नए निर्माण किए, इन्हें नव शब्द कहा जाता है। तो लव में लीन अवस्था, केवल लव नहीं परंतु उसमें समाई हुई अवस्था। तो ये थी सहज योगी आत्माओं की निशानी। आज बाप दादा सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त, सदा योग युक्त बच्चों को विशेष रूप से अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। और उनमें दो विशेषताएं देखी, बच्चों के जो संकल्प है बाबा के सामने किस रूप में इमर्ज है, इतना आसान नहीं कहा उसमें बाबा कभी ज्ञान इतनी सहज भी नहीं सुनाते, पहले तो रेखाओं के रूप में बाबा के सामने इमर्ज है। उन रेखाओं में बाबा ने एक चित्र देखा, उस चित्र में दो लक्षण देखे। यह ऐसा क्यों कहता है बाबा कि आज दो बातें देख रहे, कभी तीन बातें देख रहे, कभी पांच बातें देख रहे, उन पांच बातों में और दो बातें देख रहे, दो बातें धारण करने के लिए चार बातें धारण करो और चार के लिए एक बात धारण करो, नौ बातों को धारण करो और नौ बातों को छोड़ो, कभी एक मुरली है, ऐसा क्यों? ज्ञान में इस तरह का विभाजन कहां से आया? ज्ञान का कोई विभाजन है नहीं, वास्तव में वो सागर है, उसकी लहरें चलती रहती है। ये बाबा के ज्ञान सुनाने की विधि है, ये उसकी अपनी एक स्टाइल है। ज्ञान में इस तरह का कोई विभाजन नहीं है, एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, इस बात को धारण करने के लिए और चार बात धारण करो, पांच बातें धारण करो, चार बातें छोड़ो, दो बातें छोड़ो, ऐसा कोई विभाजन ज्ञान में नहीं होता, परंतु बाबा इस तरह की बातें कहते हैं। तो लकीर में चित्र देखा मुस्कुराते हुए, उस चित्र के दो लक्षण देखे, पहला लक्षण अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कैसे रहती है आत्माएं, सदा सुख के सागर में समाई हुई रहती है, डूबी हुई रहती है, ना केवल इतना परंतु दूसरों को भी सुख के सागर का अनुभव कराती है, संकल्प से कराती है, वाइब्रेशन से कराती है, बोल से कराती है, वृत्ति से कराती है, और संबंध से कराती है, और संपर्क से कराती है, जहां जाती है वहां सेवा ही सेवा, स्वयं सुख के सागर में डूबी हुई है और दूसरों को भी सुख के सागर का अनुभव कराना, अनुभव भी वही करा सकता है जो कि स्वयं इस सागर में डूबा हुआ है। तो पहले स्वयं को डूबना पड़ेगा, उस सागर के किनारे स्वयं जाना पड़ेगा, दूर पेटी में भरकर अगर कोई शब्द भेज दे तो वो हवाएं हमें नहीं पहुंच सकेगी, उस सागर के पास हमें स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं को यहां खाली करना पड़ेगा। परंतु हमारा जो बाबा है उस फकीर की तरह इतना कठोर नहीं है, अगर उठ के चला जाए, बैठता है वो, रुकता है, परंतु उसका ज्ञान हमें तब उतरेगा जब हम अंतर से मौन हो जाए और खाली हो जाए संसार की वाहियात बातों से, व्यक्त भाव, व्यक्त स्वभाव, संस्कार, व्यर्थ की ओर उकसाने की उत्कंठा। बाह्य मुक्ता के लिए बाबा ने कहा ना, जो कि बाह्य मुखी आत्माएं हैं वो दूसरों को भी व्यक्त भाव में लाते हैं, व्यर्थ की तरफ उकसाते हैं, आंतरिक सुख शांति और शक्ति का से बहुत दूर है, आउट ऑफ रीच उनसे। कभी कभी थोड़ी सी झलक मिल जाती है, ऐसे ही चिंतन में रहते हैं, व्यर्थ के चिंतन में, मुख के लड्डू खाते हैं और खिलाते हैं। ये किन की निशानी है? बाह्य मुखी आत्माओं की निशानी है, उनको केवल प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। प्रसन्न चित्त केवल अंतर्मुखी करते हैं, रहते हैं और कर सकते हैं। यात्यार सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न चित्त करने वाले, ऐसी जो आत्माएं हैं, जो आत्माओं को अनुभव हो जा कि हम बाप के हो गए। केवल इतना नहीं कि इनकी सेवा अच्छी है और इनकी सेवा बहुत आगे बढ़ रही है, परंतु ये कि इनका बाप अच्छा है और बाप ऊंचते ऊंच है। यह है अंतर्मुखी होकर करने वाली सेवा। बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होकर सेवा करो, अंतर्मुखता की सूरत द्वारा, बाबा के शब्दों में, सेवा करो। तो एक प्रकार के बच्चे थे अंतर्मुखी और दूसरे प्रकार के बच्चे हैं बाह्यमुखी। स्वयं स्वयं से पूछो कि मुझे कौन ज्यादा अच्छा लगता है, अंतर्मुखता या बाह्य मुक्ता। बाबा ने कहा बाह्य मुक्ता के रस आकर्षित करते हैं। एक तरफ है बाह्य मुक्ता का रस, एक तरफ है अंतर्मुखता का रस। बाह्य मुक्ता के रस से मुक्त होने की विधि क्या है? बाबा ने तो ये सुनाया कि जो बाह्य मुखी आत्मा है उनके लक्षण क्या है, जो अंतर्मुखी आत्मा है उनके लक्षण क्या है, परंतु विधि क्या है अंतर्मुखी बनने की, और क्या ऐसी विधि और उपाय और संकल्प करे कि जिसमें अंतर्मुखता का रस खींचने लगे। क्या करे? बाह्य मुक्ता के रस को समाप्त करने की विधि क्या है? इसका उत्तर आसान है। अंदर का रस इतना बढ़ जाए, अंदर का संगीत इतना बढ़ जाए कि बाहर का संगीत सुनने की अब दिल नहीं है। अंदर की जो पुकार है, अंदर की का जो प्रेम है, अंदर की जो ईश्वरीय प्रेम की तरंगे है, अंदर के फूलों की जो सुगंध है, उसी सौरभ में आत्मा लीन हो जाए तो बाहर का कोई सौरभ हम तक नहीं पहुंच सकेगा, बाहर की कोई आवाज हम तक नहीं आ सकेगी, बाहर का कोई रस हमें अपनी ओर नहीं खींच सकेगा। बाबा ने बाह्य मुक्ता को रस कहा, बाबा ने बाह्य मुक्ता को रिबिन कहा, बाबा ने आज बाह्य मुक्ता को बंधन कहा, बाबा ने आज बाह्य मुक्ता को, बाह्य मुक्ता के वातावरण को समाप्त करो, बाह्य मुक्ता के रस को समाप्त करो, बाह्य मुक्ता के बंधन को भी समाप्त करो। ये बंधन है, सूक्ष्म बंधन है, मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। मम्मा की जब बात चलती है तो सर्वप्रथम कौन सा गुण मम्मा का सामने आता है? अंतर्मुखता, गंभीरता, अंतर्मुखता, ये महान आत्माओं के गुण है। या फिर महान बनने की विधि है गंभीरता या अंतर्मुखता या एकांत प्रिय हो जाना, क्योंकि एकांत में ही वह व्यक्त व अनहद नाद सुनाई देता है। अकबर ने कभी अपने संगीतज्ञ या नवरत्न तानसेन से पूछा या कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुमसे अधिक अच्छा संगीतकार इस विश्व में कोई होगा, मुझे लगता है कि तुम संगीत के क्षेत्र में शिखर पर हो, परंतु हाँ कल रात में जब मैं सोच रहा था तुम्हारे बारे में तो मुझे एक संकल्प आया कि तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा, तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुमसे भी तो श्रेष्ठ जरूर इस संसार में कोई होगा, शायद शायद। इसीलिए तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमसे भी बड़ा कोई संगीतज्ञ है, क्या तुमने भी किसी से सीखा था? तानसेन कहता है जिससे मैंने सीखा उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे कोई ऊंट एक पर्वत के पास चला जाए तब उसे पता चलता है कि मैं कितना छोटा हूँ, वैसा ही मेरा जो गुरु है वो मेरे से कई गुना श्रेष्ठ है। अकबर कहता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, भेंट भेजो और उनको यहाँ बुलाओ। तानसेन कहता है यही तो मुश्किल है, उनको यहाँ बुलाया नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूँ, कैसे उनको, हम वहां जाएंगे और उनको प्रार्थना करेंगे कि गाओ। तानसेन कहता है उनसे ये भी नहीं कहा जा सकता है गाओ। अकबर कहता है ये तुम्हारा कौन सा गुरु है और कैसा गुरु है, क्या मैं करूं? तानसेन कहता है तुम्हें खुद ही उसके पास चलना पड़ता है। भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कोई सम्राट किसी साधारण से संगीतज्ञ के पास गया, उसका गुरु हरिदास ठाकुर। हरिदास तानसेन कहता है कि वो किसी के कहने से नहीं गाता, उसको जब दिल होती है तभी वो गाता है और वो रात को गाता है, 2-3 बजे उठता है और स्वतः ही संगीत उसके हृदय से निकलने लगता है तब वो गाता है। इतना मगन है, उसे इस संसार की कोई भी वस्तु की चाह नहीं है, प्राप्ति की उसे कामना नहीं है, उसे आप खरीद नहीं सकते। तो दिखाया है तानसेन और अकबर आधी रात को, रात से ही छिपे बैठते हैं कुटिया के बाहर ठंडी रात में, और आधी रात होती है 2-3 बजते हैं और वो जो गुरु है गाने लगता है। अकबर रात भर सुनते रहता है और अश्रुधारा बहने लगती है उसके आंखों से। दूसरे दिन चुपचाप वहां से निकल कर आते हैं और तानसेन से पूछता है, तुम भी तो अपने गुरु के समान गा सकते हो, तुम क्यों नहीं गाते? परंतु ये मैंने देखा कि तुम्हारा गुरु जैसा गाते हैं उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, परंतु तुम भी तो गा सकते हो। उत्तर देता है तानसेन, मैं गाता हूँ किसी प्राप्ति के लिए, मैं गाता हूँ किसी को खुश करने के लिए। मेरा गुरु किसी को खुश करने के लिए नहीं गाता, वो अपने भगवान के लिए गाता है। वहाँ संगीत संगीत नहीं, वो निःशब्द का स्वर है। वहाँ स्वर नहीं, वहाँ निःस्वर है, निस्तब्धता है। वहाँ सन्नाटे के वो बोल है, जो बोल निकल रहे हैं वो मौन से निकल रहे हैं। ऐसी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर जो सेवा होती है वही वास्तव में सेवा है, वो प्रशंसा का लोभी नहीं है। बाह्य मुक्ता से जो कुछ गाया जाता है उससे प्रशंसा प्राप्त होती है, अंतर्मुक्ता से वो जो गाया जाता है उससे बाप की प्रत्यक्षता होती है और उससे सफलता प्राप्त होती है। तानसेन कहता है, मैं क्या हूं उसके सामने, मैं तो चाटुकार हूं, खुश करने के लिए गा रहा हूं, धन प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि के लिए गा रहा हूं, मेरा संगीत ही क्या उसके संगीत के आगे। परंतु वो जो गा रहा है हृदय से निकल रहा है। तो बाबा शब्द, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जैसे ही सामने आता है किस चीज का बोध होता है और किस चीज की प्रतीति होती है, केवल वो कोरा शब्द निपट शब्द ना रह जाए परंतु गहन अनुभव हो। आज बाबा क्या कह रहे हैं कि दिवाली आने वाली है, तो उद्घाटन, उद्घाटन के लिए क्या चाहिए, सारी सामग्री बताओ जो चाहिए, कैसी चाहिए और क्या चाहिए, थाली चाहिए और क्या चाहिए, फूल चाहिए, तो थाली चाहिए और फूल चाहिए और कैंची चाहिए और रिबन चाहिए और क्या चाहिए, काटने वाला भी चाहिए और काटने वालों की कुछ तैयारी भी चाहिए। तो थाली कौन सी है यहाँ पर, ये थाली है जीवन की थाली। फूल कौन से है, दिव्य गुणों के फूल, दिव्य गुणों से स्वयं को संपन्न बनाओ। कैंची कौन सी है ये मुरली में नहीं बताया गया है, परंतु आप बताओ कौन सी कैंची से इस बंधन को काटना है, ज्ञान और योग की कैंची से, और कौन सी कैंची से, माताओं की तरफ से, माताओं की तरफ से कौन सी कैंची, अनासक्त भाव की कैंची, वैराग की कैंची। गीता में लिखा है वैराग की कैंची से, कैंची नहीं तलवार से सर्व बंधनों को काट डाल हे अर्जुन। तो वैराग की कैंची ज्ञान और योग की कैंची, और काटना किस रिबन को है, बाह्य मुक्ता को, बाह्य मुक्ता के बंधन को, बाह्य मुक्ता के रस को, इस रस को काटना। तो ये उद्घाटन करने से क्या बन जाएंगे, सामने क्या है, संपूर्णता, संपन्नता, बाप समान। काट भी वही सकेंगे जो समान है, ये कैंची हर एक नहीं चला सकेगा, बाबा ने कहा, वह चला सकेगा जिसने बाप दादा के फुलवाड़ी के जो फूल है उनको क्या किया है, उनकी विशेषता को जिन्होंने उनकी सुगंध ली है, सूंघना कहा है बाबा ने, सूंघा है, ऐसे जो बच्चे हैं। तो जीवन की थाली में जिनके क्या है, दिव्य गुणों के फूल है, जिनके जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की वर्षा हो रही है, केवल उनके जीवन से हो नहीं रही है, वो दूसरों के भी जीवन में कर रहे हैं। स्वयं से प्रश्न पूछना है कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसा द्वारका भाई दिव्य गुणों के फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों की वर्षा हो जाए इस जीवन में, यह जीवन दिव्य गुणों से भर जाए, संपन्न हो जाए, खुशबू निकले वहां से, ऐसा स्वयं को सजाना है। वो फैशन नहीं करना है, अभी अभी साकार मुरली चली थी, कौन सा फैशन करना है, रूहानी श्रृंगार करना है। वो फैशन करोगे तो माया खा नहीं पंजा मारेगी, तो रूहानी श्रृंगार करना है। जीवन की इस थाली में क्या सजाना है, दिव्य गुणों के फूलों को सजाना है। किसी राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, तीन मंत्रियों से, ये लो ये थालियां, तीन बड़ी बड़ी थालियां दे दी और कहा कि तीन अलग अलग प्रकार के बगीचों में जाओ और वहां से जो सबसे सुगंधित फूल है उनको एकत्र करो और कुछ ताजे जो फल है वहां पर वह एकत्र कर एक घंटे में मेरे पास आ जाओ। राजा ने अपने तीन मंत्रियों से कहा, क्या देकर, एक बहुत बड़ी थाली देकर। पहला मंत्री गया और बहुत ही परिश्रम से उसने ताजे ताजे जो फूल है, क्योंकि राजा ने कहा है, तो फूल वो फल एकत्र किए और जो सबसे सुगंधित फूल थे उनको एकत्र किया, जल्दी जल्दी किया क्योंकि समय बहुत कम था। दूसरा जो था वो थोड़ा आलसी था, उसको लगा कि राजा देखने वाला तो है नहीं और थाली है बहुत बड़ी, तो उसने कुछ फल एकत्र किए ताजे और कुछ नीचे गिरे हुए और सड़े गले फल थे उनको ले लिया, और कुछ फूल तो अच्छे लिए और कुछ फूल जो नीचे पड़े थे उन फूलों को ले लिया और ऊपर से ढक दिया। तीसरा जो था वो तो बेहद का आलसी था, उसने सोचा कि राजा तो देखेगा ही नहीं, तो उसने क्या किया, घास फूस पत्ते जो वहां, क्योंकि समय कम था, और उसने ये सब एकत्र किया और रख दिया और नीचे के जो फूल थे वो भी रख दिए और तीनों ही राजा के पास आए। वास्तव में उस राजा ने देखा ही नहीं, परंतु कहा इन तीनों को एक हफ्ते के लिए तीन अलग अलग कारागृह में बंद कर दो, उनको वहां खाना नहीं मिलेगा। पहला जो था और वो जो कारागृह थे बड़े ही सड़ांध और दुर्गंध से भरे हुए थे, तो कौन खुशी में झूमा होगा और नाचा होगा। जो पहला था जिसने बहुत सारे ताजे ताजे फल एकत्र किए थे, ताजे फल उसके पास संग्रह थे साजो फलों का, इसके लिए बहुत दिनों तक चले, और सुगंधित पुष्प थे इसके लिए अप्रभावित रहा। दूसरा जो था उसके पास भी थोड़े ताजा फल थे, पर कुछ दिनों के बाद फिर वो सड़े फल उसे खाने पड़े, और वो जो फूल थे कुछ तो सुगंधित थे परंतु कुछ दुर्गंध वाले थे। तीसरा जो था वो तो भूख से ही मर गया। हमने हमारे जीवन के थाली में श्रीनिवास भाई क्या जमा किया है, ताजे ताजे फल कि सुगंधित पुष्प, या वही जल्दी जल्दी में सड़े हुए पुष्प और सड़े हुए गले हुए फल। बाबा कह रहे हैं जीवन की इस थाली में दिव्य गुणों के पुष्प सजाओ, उस पुष्पों में यह कैंची रखो, कैंची रखी जाती है, कैंची को फिर उठाओ और बाह्य मुक्ता के रस को समाप्त करो, बाह्य मुक्ता के बंधन को, सूक्ष्म बंधन को हटाओ, बाह्य मुक्ता के वातावरण को समाप्त करो, बाह्य मुक्ता के खाते को चौपड़ा। तो बाह्य मुक्ता का रस है, खाता है, बंधन है और चौपड़ा। नया और पुराना, दिवाली आ रही है, 10 तारीख की मुरली, अक्टूबर मास। बाबा कह रहे बाबा क्या देखेंगे, वो लोग तो अपना जमा कितना पुराना क्या और नया क्या, बाबा क्या देखेंगे, कितना समाप्त किया है। बाबा साफ खाता देखना चाहते हैं, सेकंड पेज मुरली। पुराना खाता समाप्त देखना चाहते हैं, कुछ भी पुराना देखना उसे पसंद नहीं है। हमारे जीवन में यदि कुछ भी पुराना है, जहां पर विकार की दुर्गंध और सड़ांध है, सबसे पहले उसको समाप्त करो। हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है, बाबा ने आगे मुरली में यह भी पूछा कि इस फुलवाड़ी में मेरा स्थान कहां है वह देखो। दिल्ली ग्रुप से मुलाकात, इस फुलवाड़ी में मेरा स्थान कहां है वह देखो। एक तरफ तो यज्ञ की वो अनन्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा किया, एक तरफ यज्ञ की वह दादियां हैं जिन्होंने कुछ नहीं देखा और स्वयं को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दिया, वह आत्माएं हमें दिख रही है। दूसरी तरफ वह आत्माएं हैं जो बड़ी बहने और अनन्य रत्न, वो भी है। एक और वो माताएं, अभी अभी सम्मान समारोह हुआ है माताओं का, यहाँ है कोई माता जिनका हुआ जो नीचे से जाकर आई है? तो ऐसी माताएं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा को दे दिया। लास्ट संडे की मुरली, सर्व शक्तियों ने सर्वशक्तिवान को नीचे लाया है, तो अब सब शक्तियों को सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी माताएं, इस आकाश में वो माताएं भी है, उस फुलवाड़ी में वो माताएं भी एक तरफ, ऐसे वो अनन्य युगल जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता का पालन किया है, इस आकाश में वो भी है। वह सभी मधुबन निवासी जो न मालूम कितने समय से यहां आ गए, संसार का सब कुछ छोड़कर, कितना बड़ा त्याग है उनका। क्या ये साधा था त्याग है? जबकि आबू और ये पर्वत जंगल था केवल, उस समय सब कुछ छोड़कर इस भूमि पर आ जाना, संसार की चकाचौंध, सब कुछ छोड़कर इस भूमि पर आ जाना, वह सभी मधुबन निवासी इस आकाश में है। बाबा पूछ रहे मेरा स्थान कहां है यहां पर, स्वयं स्वयं को देखना है इस आकाश में, इस फुलवाड़ी में मेरी चमक कितनी है, मेरा सौरभ कहां तक फैल रहा है, मेरी महक कहां तक है। इसलिए जब इस भूमि पर आए हो, यहां रहने वाली आत्माओं को साधारण नहीं समझना, तो बाबा कह रहे हैं बाह्य मुक्ता का ये चोपड़ा समाप्त करो। उसके बाद दिल्ली ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, दिल्ली पांडव भवन से। पांडव भवन को क्या कहा बाबा ने? नेक्स्ट मधुबन है वो, वीआईपी का स्थान है, वीआईपी नगरी है, और वहां रहने वाले वीआईपी महावीर है, उनको भी बाबा ने याद किया। तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, भ्रुकुटी की कुटिया में विराजमान हो जाइए और स्वयं को इस अंतर्मुक्ता की कुटिया में मौन और एकांत के उस अनुभव में स्थित करना है, परमात्मा प्रेम में स्वयं को स्थित करना है। के दो महत्वपूर्ण मुरली की दो महत्वपूर्ण बातें जो रह गई है उसमें एक प्रश्न है बाबा का, यदि बाबा चला जाए, यदि बाप दादा चले जाए फिर भी रहेंगे क्या? क्या उत्तर है सबका? यदि बाप दादा का पाठ खुल समाप्त हो जाए फिर भी रहेंगे क्या? केवल शांतिवन में कॉन्फ्रेंस होगी और शिविर होगा और ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस होगी और पांडव भवन में भट्टिया होगी, परंतु बाबा के मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं होगा शैलेंद्र भाई, तो क्या करेंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा है, तो भी रहेंगे यहाँ पर? चिंतन का विषय है। महाभारत रामायण में दिखाए हैं कि शबरी श्री राम का कितना लंबे समय तक इंतजार करती रही, श्री राम आए, मुलाकात की, बहुत खुश हुई, अधमनीच अति नारी, बहुत खुशी हुई, राम से मिली, राम ने कहा, राम ने नवदा भक्ति सिखाई और राम ने कहा कि अभी मुझे जाना है। उसके बाद शबरी ने क्या किया? वो भी समाप्त हो गई, देह को त्याग कर दिया। उसने कहा कि राम को मिलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था, अभी मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। इस प्रश्न के ऊपर सोचना, बाबा ने प्रश्न पूछा है आज, उद्घाटन करना अर्थात सूक्ष्म वतनवासी बनना है या मूल वतनवासी बनना है, चिंतन का विषय। दूसरा एक महत्वपूर्ण और अंतिम विषय इस मुरली का है, वो है अपनी दिनचर्या को सेट करो। क्या करो? पांडव क्या करत भय, साकार मुरलियों में यह प्रश्न बहुत बार आता है, पांडव क्या करत भय। जब अज्ञातवास में पांडव होते हैं तो चारों ओर प्रश्न होता, पूछा जाता है कि पांडव इस समय क्या कर रहे होंगे। बार बार दुर्योधन पूछता है कि कर्ण बताओ मुझे कि पांडव क्या करत भय। बाबा पूछ रहे पांडव क्या करत भय, ऐसी सेवा करो कि सबकी नजर विश्व में जो विशेष भवन है पांडव भवन उसकी ओर चले जाए। तो जैसे इस पांडव भवन में, किस पांडव भवन में, इस पांडव भवन में दिनचर्या फिक्स्ड है, दिनचर्या लगी हुई है। कहाँ लगा हुआ है चित्र दिनचर्या का? हिस्ट्री हॉल के पीछे दिनचर्या लगी हुई है। वैसे ही उसी कारण सारे कार्य ठीक ठीक होते हैं। वैसे ही सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को फिक्स करो, डेली डायरी प्रोग्राम फिक्स्ड, टाइम टेबल बनाओ, बाबा ने कहा। अगर माताएं हैं तो जो सेवा है, सेवा का समय क्या है और योग का समय क्या होना चाहिए और ज्ञान की चर्चा का और मनन का और मुरली पढ़ने का कैसा समय होना चाहिए। परसों सुना ना क्लास में, मम्मा की क्लास में यहाँ पर शाम को, कि मम्मा मुरली कितनी बार पढ़ती थी? 3 बार। तो कम से कम हम तो 3 बार पढ़े, पहली बार पढ़ना, दूसरी बार और ध्यान से पढ़ना, तीसरी बार बहुत गहन चिंतन के साथ उसे पढ़ना कि एक एक शब्द केवल शब्द ना रह जाए, कि वो खो जाए कहीं, वो पेटी में भरी हुई हवा की तरह नहीं, परंतु समुद्र के पास जाकर, सागर के पास जाकर उनका अनुभव करना, ये शब्द ही वो हवाएं है जो कि उस सागर से उठ रही है, अनुभव करते हुए पढ़ना। तो कम से कम 3 बार अगर मुरली पढ़नी है उसका टाइम टेबल बनाओ। अगर योग का चार्ट 8 घंटे तक लेके जाना है, उसमें बैठा हुआ योग 2 घंटे से अधिक पढ़ाना है, 4 घंटे तक ले जाना है, उसका क्या टाइम टेबल हो। जिसकी नाइट ड्यूटी है वो ये सोचे दिन में क्या करना है, जिसकी सुबह की ड्यूटी है वो ये सोचे कि शाम को क्या टाइम टेबल बनाना है। इस योगी जीवन में सबसे पहली बात है टाइम टेबल बनाना। जो बहने सेंटर पर रहती है वो सेंटर पर सेवा का टाइम क्या है, योग का टाइम क्या है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन का टाइम क्या है, ये सारी ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भोजन और नींद, इनका भी टाइम टेबल। इस योगी जीवन में ये 2 चीजों को सेट करना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, एक नींद को और दूसरा भोजन को, इनका टाइम टेबल। ऐसे नहीं कि भूख नहीं है या फिर बीच में जो दिखा वो खा लिया। संयम हमारे जीवन का श्रृंगार है, सेल्फ गवर्नेंस। तो हमारे जीवन में वो टाइम टेबल हो। विदेश में एक लेखक है स्टीफन कावी, उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें। उन सात आदतों में सबसे दूसरी नंबर की आदत है स्टार्ट विथ एंड इन माइंड। स्टार्ट विथ एंड इन माइंड का अर्थ है कोई भी कार्य करो तो लक्ष्य हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, कोई गोल हो, गोल सेटिंग, गोल ओरिएंटेशन हो, उसका टाइम टेबल फिक्स्ड हो, रिजल्ट ओरिएंटेशन हमारा कर्म हो। सात आदतें उसने उसमें बताई है। सबसे पहली आदत बताई है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब रिएक्टिव के अगेंस्ट। रिएक्टिव व्यक्ति जो होता है वो हमेशा कंप्लेन करते रहेगा, यहाँ ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों है, यहाँ भोजन ऐसा है, वहां ये ऐसा है, यहाँ सोने का अच्छा नहीं है, ये है रिएक्टिव व्यक्तित्व। प्रोएक्टिव व्यक्तित्व ये सोचता है कि जो है उसको मैं और अच्छा कैसे बनाऊं, ये आदत है। उसने कहा अति प्रभावशाली व्यक्ति है उनकी ये आदत है। सबसे पहली आदत बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दूसरी आदत उसमें बताई है कि स्टार्ट विथ एंड इन माइंड। जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको निरंतर रखो, मतलब जो बाबा के शब्दों में टाइम टेबल सेट हो। क्यों हम यहाँ मधुबन में आए हैं तो बस ऐसे ही आ गए? क्यों आए हैं? मधुबन में आए हैं तो कुछ अनुभव करके जाना है, मधुबन में आए हैं तो जो योग का चार्ट है वो बढ़ जाए, यहाँ बैठकर वहां क्या करनी है इसकी प्लानिंग करके यहाँ से जाना है, ये दूसरा बताया। तीसरा उसने जो बताया है वो है तीसरा या चौथा थिंक थिंक विन विन। विन विन अर्थात कि इंटरेक्शन जो हमारा हो वो विन विन सिचुएशन हो। विन विन अर्थात हम जो भी करें वो केवल अपना ही नहीं सोचे, उस दूसरों का भी फायदा उसमें कैसे हो उसके बारे में भी सोचे, जो भी हमारे इंटरेक्शन हो विन विन इंटरेक्शन हो सारे, कि हम जो भी करें मतलब दूसरों को ज्यादा मिला वो ज्यादा क्यों मिला, हमको कम क्यों मिला, इस तरह का सोच नहीं हो, कोऑपरेशन सहयोग की भावना जिसमें हो, विन विन, लूज लूज नहीं, जीरो सम नहीं, जीरो सम एक इंग्लिश का शब्द है वो नहीं, जीरो लूज लूज नहीं, उसका भी फायदा और हमारा भी फायदा, ये आदत डालनी है। दूसरी एक आदत उसमें बताई है टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये इच्छा नहीं रखो कि दूसरे हमको समझे, हमें दूसरों को समझना है, ये एक आदत डालनी है। और एक आदत उसमें बताई है वो है सिनर्जी, तालमेल बिठाना, तालमेल बिठाना। सिनर्जी की आदत अर्थात तालमेल बिठाना, जो भी परिस्थिति में हम है उससे तालमेल बिठाना, एडजस्ट हो जाना उन परिस्थितियों में। और एक आदत बताई है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ अर्थात कुल्हाड़ी जो है उसको तेज करना, ऐसा नहीं कि बस कार्य ही करते बैठो। कोई एक व्यक्ति है झाड़ काट रहा है, उसको कह रहे हैं कि भाई कितने समय हो गए, कितने थक गए हो, वो कहता है उसको अगर कहो कि कुल्हाड़ी तो तेज करो, वो कहता है मेरे पास समय कहाँ है कुल्हाड़ी तेज करने का, इतना बड़ा जंगल पड़ा है सबको साफ करना है। तो कुल्हाड़ी तेज करना अर्थात हमारा जो मन है उसको अमृत वेले रिफ्रेश करना, बुद्धि को रिफ्रेश करना, यह भी उसमें एक आदत है। इस तरह की कुछ आदतें उसमें दी है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड नंबर की जो आदत है स्टार्ट विथ एंड। स्टार्ट विथ एंड मतलब जो भी हम करें उसका टाइम टेबल सबसे पहले, अगर जिसने टाइम टेबल फिक्स नहीं किया है तो टाइम टेबल फिक्स करें, मॉर्निंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, जिसकी जिसकी है उस अनुसार, सेवा अनुसार के अनुसार हमारा टाइम टेबल हो, भोजन का भी टाइम टेबल हो तो नींद का भी टाइम टेबल हो, ऐसा नहीं कि जो दिखा वो खा लिया, संयम हमारा श्रृंगार है जैसे मैंने कहा, ये चीजों को जीवन में धारण करना है। तो बाबा ने और एक बात यहाँ पर कही है संतुष्टता की, और ऐसी अगर टाइम टेबल की सेटिंग हो तो एक व्यक्ति कितने लोगों का काम कर सकेगा, 10 लोगों का काम कर सकेगा, और 1000 लोगों का काम कब होगा ये दूसरा प्रश्न है मुरली का, सुशील भाई, जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है और कंबाइंड है, क्योंकि 1000 भुलजाओ वाला साथ है तो 1000 गुना कार्य होगा, और 10 गुना कार्य कब होगा, जब सेटिंग होगी, जब यज्ञ के शुरुआत में एक एक डिपार्टमेंट में एक एक भाई रहता था, आज जहां कार्य करने के लिए, सेवाओं करने के लिए एक एक डिपार्टमेंट में 10-10 लोग है, तब एक ही व्यक्ति, एक ही भाई, एक ही बहन 10-10 लोगों का काम करते थे। मधुबन के प्रेम भाई ने एक बार हमको अनुभव, प्रेम भाई जी ने अनुभव सुनाया था कि जब उनसे कहा गया बर्तन डिपार्टमेंट में और कोई चाहिए क्या, दादी प्रकाशमणि जी ने उनसे प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, भाग्य बढ़ जाएगा, भाग्य कम हो जाएगा। देखो कितना श्रेष्ठ उत्तर है। और अभी तो फैंस चाहिए और लोग चाहिए, तब एक ही व्यक्ति कितनों का काम करता था। तो बाबा ने आज कहा कि अगर सेटिंग होगी तो क्या होगा, 1-10 का कार्य कर सकेगा। तो मुरली की ये कुछ मुख्य बातें थी। तो अभी ऐसे सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, ऐसे सदा अंतर्मुखी रहने वाले, ऐसे सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, ऐसे अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न चित्त करने वाले, ऐसे बाप समान, ऐसे दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करने वाले, दिव्य गुण लाने वाले, अपनाने वाले, ऐसे एक सुख के सागर में सदा समाये हुए, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई इसी लगन में सदा रहने वाली, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। आधा मिनट बैठ के फिर जाएंगे। मौन और अंतर्मुखता और एक हाथ की ताली, दो हाथ की ताली नहीं।